ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए जन सेवा केंद्रों से गांव के डिजिटल और वित्तीय सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं दिनेश त्यागी, पूर्व प्रबंध निदेशक जन सेवा केंद्र इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे डिजिटल भारत की उस अनोखी पहल पर जिसने गांव-गांव में तकनीक और सेवाओं का उजाला पहुंचाया है। हम बात कर रहे हैं कॉमन सर्विस सेंटर की, जिसकी 16 जुलाई को 16वीं वर्षगांठ थी। जिस तरह से AI हमारे जीवन में दखल देती जा रही है, उसी तरह से जो ग्रामीण स्तर के उद्यमी हैं, CSE चलाने वाले लोग हैं, उनको भी इसकी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। 16 जुलाई को इस पर हुए एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि सरकार किस तरह से इन उद्यमियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रही है।
AI मिशन है अपना बहुत अच्छा। उस AI मिशन के तहत हम लोगों ने टारगेट लिया है, करीब 10 लाख लोगों को AI स्किल्स में तैयार करेंगे। उसमें 5.5 लाख VLEs अपने हैं, आप सबको सबसे पहले उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी।
हमारे साथ इस बातचीत के लिए CSE के पूर्व प्रबंध निदेशक मौजूद हैं दिनेश त्यागी जी। उनसे हम इस पूरे नेटवर्क की बात करेंगे जिसने ग्रामीण भारत में लोगों को डिजिटल व्यवस्थाओं से जोड़ा है। दिनेश जी, स्वागत है आपका।
थैंक यू सो मच।
सबसे पहले तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि 16वीं वर्षगांठ हो गई है CSE की, और आप हमें ये बताएं कि जब शुरुआत हुई थी इसकी तो क्या उद्देश्य हुआ करता था, और आज वो उद्देश्यों के किस मुकाम पर हम हैं।
CSE जो स्कीम है वो 2006 में शुरू हुआ था। उससे पहले जो कुछ सेंटर्स थे भारत में, 15,000 के करीब कुछ डिजिटल सेंटर्स थे, उन सबको स्टडी किया गया और देखा गया कि वो सेंटर जो डिजिटल एक्सेस पॉइंट्स हैं, अगर हम उनका एक्सपेंशन करें तो लोगों की बहुत मदद हो जाती है। और ये 15,000 सेंटर्स कुछ सरकार के थे, जैसे आंध्रा में था, कुछ केरला में थे, कुछ हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बनाए थे। उन सबको स्टडी करके फिर CSE स्कीम का डिजाइन किया गया
जी।
2008 में CSE को जब शुरू किया गया तो 2008 में एक कैबिनेट का अप्रूवल था कि एक इंस्टीट्यूशन इन परपेचुइटी क्रिएट करनी चाहिए ताकि CSE के पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करती रहे। तो CSE SPV का जन्म 2008 में रजिस्टर्ड हुई थी कंपनी, तो इसलिए वो 2008 से शुरू करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, स्कीम बनी थी उसमें बहुत रिसर्च हुआ और बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, और फिर मकसद यही था कि हम लोगों को उनके घर के आसपास सारी सरकारी सेवाएं कैसे दिला सकते हैं, ये मकसद था, और बिना सरकारी ऑफिस गए हुए। लेकिन ये भी सोचा गया कि हम उसको कैसे सस्टेनेबल मॉडल बनाएं। तो ये था कि गवर्नमेंट सर्विसेज देने से सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल तो नहीं क्रिएट हो सकता, कि गवर्नमेंट सर्विस में लिमिटेशंस हैं, बहुत लोग नहीं आते हैं और कुछ टाइम के लिए लेते हैं। तो इसलिए उसको ऐसा बनाया गया कि गवर्नमेंट सर्विस तो होगा ही, लेकिन वो सेंटर जो है बिजनेस टू सिटीजन सर्विसेज है उनको भी मुहैया कराएगा लोगों को। तो लोगों के ऑलमोस्ट ऑल रिक्वायरमेंट्स जो G2C और B2C बोलते हैं वो CSE के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। यही मकसद था और काफी हद तक ये मकसद पूरा हो गया, क्योंकि अभी जो CSE है वो ऑलमोस्ट जो गांव में रहते हैं, जो दूर दराज में रहते हैं, उनके लिए जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, पेंशन है, या उनको कोई प्रोडक्ट खरीदना है वो भी वो अपने घर पे बैठ करके खरीद सकते हैं। और ये जो एंटरप्रेनर्स हैं, ये सरकार की सहायता के बिना, सरकार सिर्फ अपनी सर्विस डिलीवरी अनेबल करती है लेकिन वैसे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करती है, तो उन्होंने उन सबको, क्योंकि उसके पास सारी अपॉर्चुनिटी है, उसकी एक सरकारी सेवा देने से क्रेडिबिलिटी और विश्वास जग जाता है लोगों के अंदर। तो उस विश्वास के अनुसार वो अपना बिजनेस जो बढ़ाता है और लोगों की बाकी चीजों की जरूरतों को भी पूरी करता है, जिससे कि वो सस्टेनेबल है। तो आज देश में 6 लाख के करीब कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, और शुरू से आज तक हमने जितना देखा है, जो भी CSE के साथ जुड़ा है कोई छोड़ के नहीं गया है। मतलब इसको हम सोशल एंटरप्राइज बोलते हैं, मतलब समाज की सेवा भी और उसके साथ साथ आप अपना बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हैं
जी। तो सर, आज CSE में तकरीबन 6.5 लाख से ज्यादा सेंटर एक साथ काम कर रहे हैं, तो इस नेटवर्क को इतना व्यापक बनाने के पीछे सबसे बड़ी चुनौती अगर हम बात करें तो क्या रही, और किस तरह से ये तमाम लोग एक ही नेटवर्क में काम कर पा रहे हैं।
शुरू में जब CSE का शुरुआत हुआ था तो उसमें डिसाइड हुआ था कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपना एक प्राइवेट कंपनीज को आइडेंटिफाई करेगी जो CSE को रोल आउट करेंगे
जी।
तो इस तरह बहुत सारी कंपनियों ने बिड किया, उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां देश की थी वो भी थी, कुछ NGO थे उन्होंने बिड किया, उसको चलाया गया। जो पहला फेज था CSE का 2008 से 2012 तक, वो ये वाला फेज था जिसमें सीएससी की सर्विस एक इंटरमीडिएट के थ्रू डिलीवर होती थी. वो इंटरमीडिएट जो सिलेक्शन हुआ था स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, उनका कॉन्ट्रैक्ट था और स्टेट गवर्नमेंट उनके थ्रू ये काम करती थी. लेकिन जब फेज टू शुरू हुआ तो क्योंकि फेज वन में काफी लिमिटेशन थी और एक्सपीरियंस सरकार का बहुत अच्छा नहीं था, कुछ स्टेट ने भी कंप्लेंट किया था, तो भारत सरकार में फिर ये डिसाइड किया गया कि हम एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाते हैं जिसमें सारे सीएससी डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, तो कोई इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं होगी. तो इसीलिए फिर वो आर्किटेक्चर बना, डिजाइन किया, टेक्नोलॉजी डिजाइन की गई और जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको भी बहुत लाभ हो गया कि उनको सबके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक जगह जाकर के पूरे नेटवर्क को यूटिलाइज कर सकते हैं. तो जो सीएससी का जो टेक्नोलॉजी नेटवर्क है वो फेज टू में शुरू हुआ. एक्चुअल में तो शुरुआत 2013 के बाद हुई थी और फिर जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो 2014 में जब डिजिटल इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बना और डिजिटल इंडिया में इसको पॉलिटिकली एंड अदरवाइज एक्सेप्ट किया गया, तब इसमें काफी मेहनत की, सरकार ने सपोर्ट किया. ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, सेंट्रलाइज है और सारे सीएससीज को एक्सेस क्रिएट करती है जैसे, और वो सारी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. सर्विस प्रोवाइडर जितने भी हैं, चाहे वो सरकारी हैं चाहे गैर सरकारी हैं, वो सब सिर्फ एक ही एंटिटी के साथ बात करते हैं और देश के हर कोने और गांव में अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं.
बिल्कुल. तो चलिए अब आपकी बात कराते हैं आदर्श से, जो खुद एक कॉमन सर्विस सेंटर लंबे समय से चला रहे हैं, और उनसे जानेंगे कि उन्हें इससे किस तरह से आमदनी होती है, किस तरह का फायदा होता है और उनका खुद का अनुभव कैसा है. आदर्श जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
मैं खैरा हवेली कर्णपुर जिला मुंगेर बिहार राज्य से बोल रहा हूँ सर.
तो कितने साल से आप ये कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे हैं आदर्श जी?
मैं 5 साल से चला रहा हूँ.
तो किस तरह की चीजों के लिए लोग ज्यादातर आपके सेंटर में आते हैं, क्या दिक्कतें होती है जिनका समाधान आपके पास से लोगों को मिलता है?
मेरे पास सर पैन कार्ड, आधार कार्ड और इनकम टैक्स जो होता है ITR, ये सारा चीज सर्विस देता हूँ मैं. और इसके साथ साथ जो ऑनलाइन वैकेंसी यहाँ पे फॉर्म निकलती है वो भरता हूँ मैं. कस्टमर बहुत खुश रहते हैं इस चीज के लिए कि गांव में सर्विस दे रहे हैं हम लोग, कहीं दूर जाके भटकना नहीं पड़ रहा है.
आपको कोई ट्रेनिंग दी गई थी सरकार की तरफ से या आपको पहले से जानकारी थी कंप्यूटर ऑपरेट करने की?
नहीं सर, एक्चुअली हम लोग जो है ना पहले कंप्यूटर सीख रहे थे ना, तो उसी से हमको जानकारी मिली, बाकी तो कुछ कुछ सर हमको सीएससी की तरफ से भी सीखने के लिए मिला सर.
तो अगर आपकी तरह कोई और उद्यमी बनना चाहता है ग्रामीण स्तर पर, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे, कैसे आपकी यात्रा रही और उससे लोगों को कैसे फायदा हो सकता है?
मैं तो यही सलाह दूंगा कि सर ये जो क्षेत्र है सीएससी का ना बहुत अच्छा है और ग्रामीण लोग को जो है ना परेशानी ना हो इसके लिए बहुत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है. और इससे होता है जो बीएलई बनना चाहते हैं उसका इनकम भी बढ़ोतरी होगा, वो आर्थिक स्थिति भी उसका मजबूत होगा. मैं अभी जो है सर 20,000 से 25,000 रुपया महीने का कमा रहा हूँ सर.
बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी हमसे बातचीत करने के लिए.
जी सर, थैंक यू सर.
तो सर तकनीक, जैसे आपने एक लंबा समय दिया अपनी सर्विस का सीएसईज को, तो अब जिस हिसाब से तकनीक बहुत ही तेजी से बदलती जा रही है, तो भविष्य की तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड टेक्नोलॉजी भी तेजी से आगे बढ़ रही है, अपना विस्तार कर रही है, तो सीएसईज में इस दिशा में नई पहल किस तरह से हो रही है कुछ बताएं हमें.
जो मेन पर्पज है लोगों को उनके घर के आसपास उनके सहूलियत के अनुसार सारी सेवाएं प्रदान की जाए, तो ये फोकस तो कंटिन्यू करेगा, इसमें बहुत बदलाव नहीं होगा. इसमें कुछ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के थ्रू हो सकता है, जैसे आप अगर कोई स्किल का प्रोग्राम कर सकते हैं या जो अभी माननीय मंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम के अनुसार साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम कुछ कर सकते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम कुछ कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, तो वो लोगों को सिखाने में ये मदद कर सकता है. और भारत सरकार के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं अगर उनको एक क्लिक के साथ अगर इस देश में पहुंचाना है तो सीएससी एक सबसे बड़ा अच्छा, हमारे हिसाब से लगता है कि सबसे अच्छा साधन है और सबसे अच्छा तरीका है. काफी चीजें क्या होता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम बनाती थी, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को बताते थे, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करता था, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक लेवल पे देता था, फिर जाके ब्लॉक से सिटीजन के पास जाती थी. तो ये जो इतना बड़ा दायरा था, इतना टाइम, इतने बीच में लोग, और कुछ स्टेट ठीक से रेस्पॉन्ड करेंगी या स्टेट का अपना तरीका होगा काम करने के लिए, वो भी लिमिटेशन थी
जी.
अब वो लिमिटेशन खत्म हो गई है. अब कुछ भी करना आप चाहते हैं देश में तो आप तुरंत, जैसे वन क्लिक टाइप होता है, जैसे UPI काम करता है उसी तरह ये सेंट्रल सिस्टम है, वन क्लिक टाइम ये आपके लिए रिमार्केबल वर्क कर सकता है और तुरंत आप अपनी सेवाएं लोगों तक पहुंचा सकते हैं.
तो सर, सीएससी के जरिए जिस तरह से महिलाओं, किसानों और युवाओं को विशेष रूप से सशक्त किया जा रहा है, आपके जहन में कुछ ऐसी कहानियां हैं, प्रेरणादायक कहानियां, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है, जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें?
सीएससी के ये 5 लाख जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, इनकी 5 लाख कहानियां हैं। एक्चुअली यूनिक है, क्योंकि वैसे देखने में लगता है आसान है, लेकिन गाँव में सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट करना बहुत बड़ा चैलेंज है।
बिल्कुल।
और इन्होंने चलाया है, किस तरह से चलाया ये बच्चे जानते हैं। शुरू में तो बहुत तकलीफें होती थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, लोग डेटा कार्ड यूज करते थे, कई बार छत पर जाकर के ट्रांजेक्शन करते थे, तो सड़क के ऊपर आ जाते। आज थोड़ा बदलाव है, सहूलियत है, क्योंकि अभी कनेक्टिविटी के इश्यूज काफी हद तक कवर कर दिए गए हैं
जी।
लेकिन जैसे आपने कहा, महिलाओं के लिए एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि इसमें करीब 1 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं, और महिलाएं ये भी सीएससी चलाती हैं, जो अपने आप को सीएससी चलाती हैं। और ये देखा गया कि जो महिलाएं सीएससी चलाती हैं वो पुरुषों से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि महिलाओं की लोकल कम्युनिटी में क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है, उनके वो जो सर्विस एटीट्यूड है, लोगों की सेवा करना, वो बहुत अच्छा है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमने तो देखे हैं कई बच्चियों ने, जैसे एक लड़की में, एक सोनू बाला लड़की है रेवाड़ी में, उसने अपना कॉलेज का जॉब छोड़ा, प्रोफेसर थी, एमसीए थी, और उसने सीएससी शुरू किया, और वो इतनी अच्छी थी कि उसने अब तो कर बहुत काम करती है। सारे पंचायत वाले, सारे लोग आकर के बैंक ब्रांच नहीं जाते थे, और आके उसके सेंटर से अपने पैसे निकालते थे, किसी को पेंशन निकालनी है और बैठे रहते थे। वो इतना विश्वास था कि कई बार जब वो कहती थी कि पैसे खत्म हो गए हैं, तो लोग बोलते थे कि अच्छा बेटी तू ट्रांजेक्शन कर ले, पैसे कल दे देना। ये जो विश्वास है ये महिलाओं ने किया। ऐसे हमारी लड़कियों की कहानी तो बहुत है, बहुत अमेजिंग स्टोरीज हैं, उन्होंने कैसे बनाया और कैसे शुरू किया। एक लड़की कर्नाटक में यशोदा, उसने जब डिजिटल लिटरेसी किया तो उसने पोर्टर्स को स्टेशन पे जाके डिजिटल लिटरेसी सिखाया, और यूनिक्स को पकड़ा, और यूनिक्स को पकड़ के उन सबको डिजिटल सिखाया। मतलब वो ये यूनिक इनिशिएटिव जो बाकी आपने सोचा नहीं, कल्पना नहीं की, उनको उन्होंने किया। हमारा एक लड़का गोकुल सैनी है राजस्थान में, सरकारी वो डेटा एंट्री ऑपरेटर था, उसने वो काम छोड़ करके और सीएससी चलाना शुरू किया। आज तो बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, इसमें 25 साल से एक एनजीओ चलाता है, और उसने फिनोमिनल वर्क किया है, मतलब ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और सारी महिलाएं हैं, करीब 2000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिनको वो सपोर्ट करता है और उनकी हर रिक्वायरमेंट को मीट करता है। तो महिलाओं की कहानियां बहुत हैं जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान किया है। तो आपने जैसे कहा कि महिलाओं का एम्पावरमेंट, एक तो उनका जब बिजनेस करेंगे तो उनका नेचुरली एक एम्पावरमेंट है, और दूसरा जब महिलाएं काम करती हैं तो उस सेंटर पे महिलाएं ज्यादा आती हैं। अदरवाइज वो महिला गांव के इलाकों में अगर पुरुष सेंटर चलाता है तो महिलाओं में थोड़ा सा लिमिटेशन रहता है, थोड़ी सी एक्सेसिबिलिटी में थोड़ा लिमिटेशन है। लेकिन अगर महिला सेंटर चलाती है तो महिलाओं को वो एक्सेस ज्यादा क्रिएट होती है, उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा लेवल पे होता है, एंड देन दे कैन सर्व द कम्युनिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअल में हमने जब टेलीमेडिसिन शुरू किया था तो बहुत सारी महिलाएं जो डॉक्टर के पास नहीं जाती थी या डॉक्टर के पास नहीं ले जाई जाती, वो सीएससी सेंटर पे आके डॉक्टर से बात करती थी, और ज्यादा बात करती थी, अपने दिल खोल के बातें करती थी, जो नॉर्मली वो डॉक्टर के सामने नहीं कर सकती, वो कंप्यूटर के सामने बैठ के बोल देती थी।
बिल्कुल।
तो दैट इज हाउ द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज टेकन प्लेस, बोथ थ्रू आइदर क्रिएटिंग ए बिजनेस और थ्रू एनेबलिंग द अदर वुमेन टू कम टू द सेंटर एंड लर्न व्हाटएवर दे वांट टू लर्न और एक्सेस सर्विस।
ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो जानकारियां दी, जाहिर है कि लोगों को बहुत ज्यादा इससे फायदा हुआ है, और आने वाले दिनों में जो भी ग्रामीण उद्यमी हैं उनके लिए ये एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। तो अगर आप भी भारत के विकास में सहभागी बनना चाहते हैं तो कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए एक डिजिटल उद्यमी बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सीएससी की आधिकारिक वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जा सकते हैं।
थैंक यू सो मच।
अभी आप सुन रहे थे जन सेवा केंद्रों से गांव के डिजिटल और वित्तीय सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे दिनेश त्यागी, पूर्व प्रबंध निदेशक, जन सेवा केंद्र, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।